प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, और अपने मित्रों को भी आज आप साथ में लाए हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि राजा सुलेमान, जो इस पुस्तक का लेखक है, अलग अलग तरीके से अपने जीवन के प्रयोग और अनुभव को हमें बता रहा है कि किस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में संतुष्टि या संतोष प्राप्त कर सकता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। पिताजी, आप उन पर भी अपने अनुग्रह प्रदान कीजिए। आज के इस दिन को, इस समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे हैं कि सुलेमान तरह तरह के प्रयोग करके देख रहा था कि जीवन में संतोष प्राप्त हो, परंतु अब तक तो उसे किसी में भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। अब वह अंतिम प्रयोग कर रहा है। उसने विज्ञान, प्रकृति के नियमों का विश्लेषण किया और कुछ सहायता प्राप्त की, परंतु संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद उसने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान पढ़ा, परंतु लाभ न हुआ। इसके पश्चात उसने भोग विलास और भौतिकवाद की चरम सीमा पर व्यवहार किया। उसने विधि के विधान और स्वार्थपरायणता के आधार पर जीवन जीकर देखा, परंतु उससे फिर भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उसने धार्मिक कृत्यों को करके देखा, परंतु सब व्यर्थ रहा। उसने धन संचय करके देखा, परंतु धन से भी उसे संतोष प्राप्ति नहीं हुई। अब वह अंतिम प्रयोग करेगा जिसे हम सदाचार कहते हैं। आज की भाषा में हम उसे भला मनुष्य कहेंगे। आज का मनुष्य इस दिखावे का प्रयास कर रहा है कि वे जीवन के मुख्य मार्ग के मध्य चल रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जैसे बड़े शहर में कोई सड़क की बत्ती के नीचे दुकान लगाए हो, और उपनगर में अलग अचेतन अवस्था में एकांतवास में जी रहा हो और आराम का जीवन व्यतीत कर रहा हो। उनके बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में जाते हैं, वे बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, वे उसी कलीसिया के सदस्य हैं जहां सब धनवान मनुष्य हैं। उनका आराधनालय बहुत ऊंचा है और उसके घंटे की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। उनका पादरी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर चुका है, उसका ज्ञान अपार है, परंतु बाइबल बहुत कम जानता है। यदि वह बाइबल से प्रचार नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सुलेमान ऐसे ही सदाचारी समाज में रह करके देखता है। तो आइए हम देखें सदाचार और भलाई में संतोष की खोज। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। प्रसंगवश यह सच है, इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। यह सुनना मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसके बारे में कहे कि वह बहुत अच्छा पड़ोसी है। वह किसी से विवाद नहीं करता है। वह न तो धर्म पर विवाद करता है और न ही राजनीति पर और न ही किसी बुरे काम में पड़ता है। वह मुस्कुराता रहता है और सीधा साधा मार्ग में होकर के चला जाता है। न तो वह दाहिने ओर होता है और न ही बाईं ओर। वह एक सम्मानित जन है। उसे समाज मान प्रदान करता है। वह नगर की अनेक संस्थाओं का सदस्य भी है और तरह तरह के लोगों के साथ व्यवहार रखता है, उठता बैठता है। उसके अंतिम संस्कार के समय पादरी उनकी प्रशंसा करके उसे स्वर्ग में धकेलना चाहेगा। सुलेमान कहता है कि अच्छा नाम और अंतिम संस्कार के समय प्रशंसा पाने के लिए हमें प्रयास करते रहना है। क्या यह संतोषदायक है? सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर उस पर सोचेगा। सदाचार और भलाई बड़ी मर्यादा के साथ की जाती है। मनुष्य क्लब की सभाओं में जाता है और प्रदूषण पर भाषण सुनता है। वे अति मर्यादित रूप से बैठकर चर्चा करते हैं, परंतु करते कुछ भी नहीं है। अगले सप्ताह कोई आकर नागरिक समस्याओं पर भाषण देता है और वे बैठकर ध्यान से सुनते हैं, परंतु कुछ भी वे करते नहीं है। एक दिन वे सब अपने ही किसी साथी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और उसकी प्रशंसा सुनते हैं। सच तो यह है कि उसकी मृत्यु का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता है, उसे कोई स्मरण नहीं करेगा। हमारे नगर में जीवन ऐसा ही है। मेरे प्रियो, ऐसा जीवन मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता है। मैं बहुत खुश हूं कि ना तो मैंने ऐसा जीवन जिया और ना ही जी रहा हूं। मेरे विचार में यह सबसे बुरी दशा है। मैं स्पष्ट कहूं तो मैं ऐसे समाज से विद्रोह करने वाले युवाओं को दोष नहीं देता। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, हंसी से खेद उत्पन्न है क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। आज मनुष्य दुख दूर करने के लिए कुछ भी करता है। अब व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि आप कब्रिस्तान तक हंसते हुए जाएंगे। सच्चाई को फूलों और संगीत से और प्रचारक की व्यर्थ की बातों से और प्रशंसा से ऐसे ढांक दिया जाता है कि घर जाकर सब यही कहते हैं, यह दफन बहुत ही अच्छा था, और शीघ्र ही मृत्यु की गंभीर सच्चाई को भूल जाते हैं, उस व्यक्ति के दुख को भूल जाते हैं और सब उस दफन की बातों को करना आरंभ कर देते हैं। सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। अभी वे कब्रिस्तान से 50 गज की दूरी पर भी नहीं पहुंचे हैं कि कोई एक चुटकुला सुना देता है और सब हंस पड़ते हैं। यह मृत्यु की उपस्थिति का जीवन है। ना जाने क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वे अपने मित्रों को कुछ करता देख समझ नहीं पाते कि वे भी मृत्यु के मार्ग पर हैं, और उनके लिए उचित होगा कि वे ध्यान दें उनका मार्ग किस ओर जा रहा है। क्या वे उद्धार पा चुके हैं? क्या वे खोए हुए हैं? क्या उनका संबंध परमेश्वर के साथ सही है? उन्हें इन बातों के महत्व से कोई अर्थ नहीं है। वे समुदाय के कोष में दान देते हैं और रेड क्रॉस की सेवाओं में भाग लेते हैं। वे समुदाय में समाज सेवक हैं, परंतु वे ना तो मसीह की गवाही देंगे और न ही मसीह के लिए सबके सामने खड़े होंगे। वे सिर्फ अपने लिए ही खड़े होते हैं। सबोपदेशक के पहले पद में हम पढ़ते हैं, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हाणी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, यह भी व्यर्थ है। सुलेमान के कहने का अर्थ है कि दोनों काम करके देखे जाएं। बुद्धिमान मनुष्य की बातें सुनो और फिर जाकर धमाकेदार संगीत का आनंद भी लो। एक दूसरे से शायद अच्छा हो, परंतु दोनों ओर लुढ़कना आसान है। शेष संपूर्ण अध्याय में यही विचार है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 9 पद में, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मेरे मित्रों, किसी भी बात पर क्रोध ना करें, अच्छे मनुष्य बने, सबके साथ मित्रता रखें, क्योंकि इससे व्यापार में लाभ होगा। आसान मार्ग पकड़ लें, धीरे धीरे चलें, सबके साथ समझौता कर लें, एक भीड़ के साथ अपनी नाम कमा लें और फिर दूसरे दिन दूसरे भीड़ के साथ हो लें कि वहां भी नाम कमा सकें। यह सदाचारी शनिवार को नरक का जीवन जीता है और रविवार को आराधना में उपस्थित होकर मसीही जन होने का श्रेय पाता है। एक पुरुष जो शनिवार को नशे में धुत था, मुझसे रविवार को भेंट करके कहने लगा, मैं ईसाई हूं, आप क्या मुझे अन्य जाति समझ रहे हैं या अन्य व्यक्ति समझ रहे हैं? सच तो यह है कि वह अन्य व्यक्ति ही था, अन्य जाति ही था, क्योंकि यदि वह मसीह को जानता तो उसका जीवन ऐसा नहीं होता। आज हम में से कई लोग इसी प्रकार का जीवन जीते हैं और अपने आप को इस प्रकार का दावा देते हैं कि वे मसीही हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, बुद्धि मीरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। नीति वचन में हमने देखा था कि बुद्धि प्रभु यीशु का दूसरा नाम है। मसीह हमारे लिए ज्ञान बनाया गया था। ओह, इस सदाचारी को मसीह की कैसी आवश्यकता है। सबोपदेशक 7 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। ध्यान दीजिए, रुपए की आड़, उसे बहुत पैसा चाहिए, प्रभु यीशु नहीं। बुद्धि से उसके रखवालों के प्राण की रक्षा होती है। आप पैसे से जीवन नहीं खरीद सकते। डॉक्टर आपके जीवन को कुछ समय बढ़ा देगा, परंतु वह आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। केवल ज्ञान अर्थात प्रभु यीशु आपको अनंत जीवन देता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। वही आपको जीवन भी दे सकता है। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है। अब यदि आपको जानने वाला कहे कि आप ठग हैं तो परेशान मत होइए। यदि आप बीच का मार्ग अपनाएंगे या अपनाए हुए हैं तो एक दिन समाज आपकी प्रशंसा ही करेगा। भलाई करके जीवन में संतोष पाने की खोज करना पुरुषार्थ का नहीं निरुत्साह का जीवन है, तथापि यह अधिकांश मनुष्यों का जीवन है। वे शनिवार को हास्य नाटक देखते हैं और रविवार को आराधना में उपस्थित होते हैं। कैसा आडंबर है यह। हमने देखा है कि हमारे युवा इससे विद्रोह करते हैं। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हवाई में ऐसे 2000 जन हैं जो एक टापू है, और वहां उनमें प्रचार भी किया गया है। अनेकों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया, वे सब कुछ करके देखते हैं, परंतु वे मसीह को ग्रहण क्यों नहीं करते? वे अपने परिवारों में मसीह को ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? उनके माता पिता तो कलीसिया के सदस्य हैं, वे अपने घर में कभी गंभीर नहीं देखते, कलीसिया में कभी भी वे नहीं होते। उन्होंने झूठा दिखावा देखा है, उन्होंने सदाचारियों के जीवन में खालीपन को देखा है। मेरे विचार में एक नास्तिक को समझना आसान है अपेक्षा इसके कि एक आराधना में जाने वाले को। नास्तिक पहली बार प्रभु यीशु के बारे में सुनकर कोई न कोई प्रतिक्रिया दिखाएगा, परंतु नियमित आराधना करने वाला प्रभु यीशु के बारे में सुनते सुनते कठोर हो गया है। यही तो एक त्रासदी है कि उसके जीवन में कुछ भी प्रतिक्रिया आप नहीं देख पाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 में आते हैं और इस अध्याय में भी एक गुनगुने मनुष्य की चर्चा की जा रही है। वह ना तो गर्म है और ना ही ठंडा। नैतिकता को मानने वाले और सदाचारी कहते हैं कि वे सुनहरे नियम का पालन करते हैं, परंतु वे सुनहरे नियम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, न ही उसकी अनिवार्यताओं के बारे में जानते हैं। सुलेमान ने देखा कि एक दुष्ट और एक सदाचारी में अधिक अंतर नहीं है। आइए हम देखें कि वह क्या कहता है। सर्वोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। केवल प्रभु यीशु जो ज्ञान है मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। वह जीवन में हो तो उत्साह, आनंद और शांति प्राप्त होते हैं। वह हमें मध्य मार्ग से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक हर एक बात को उपलब्ध करवा सकता है। सर्वोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान, राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। ध्यान दीजिए, वह कहता है सावधान, तुम क्या करते हो परेशानी में मत पड़ जाना। आगे लिखा है सर्वोपदेशक 8:4 पद में, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। जी हाँ, राजा तो जिस बात पर विश्वास करता है उसके पास पूरी स्वतंत्रता है कि वह ऐसा करे। मेरे मित्रों, आप राजा के समान प्रभु यीशु के लिए खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं? मैंने एक आवारा व्यक्ति से जिसने हिप्पी जीवन शैली अपना ली थी साक्षात्कार किया। मैंने पूछा कि आपने ऐसी जीवन शैली क्यों चुनी, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? उसने कहा, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं अपनी इच्छा का जीवन जीना चाहता हूं। मैंने कहा, आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप अपना पहरावा बदलकर अपने समाज में लौट जाएं तो क्या वे आपको स्वीकार करेंगे? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे विचार में नहीं। मैंने उससे पूछा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आपको स्वतंत्रता नहीं है, है क्या? हमारे युवागण सोचते हैं कि उन्हें अपने समूह की स्वीकृति की आवश्यकता है। वे नहीं जानते कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। उनमें से अधिकांश नशीले पदार्थों का सेवन इसलिए करते हैं कि उन्हें समूह में स्थान मिले। मैंने उस युवक से पूछा, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं तो क्या इसका अर्थ है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं? उसने उत्तर दिया, मैं तो कहूंगा कि आपको स्वतंत्रता है। तब मैंने उसे बताया कि मुझे जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह उसके पास नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं सदा ही ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूं, मैं जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहनता हूं, मैं किसी नियम से बंधा हुआ नहीं हूं, मुझे पूरी स्वतंत्रता है। मैंने कहा, हम एक ऐसे संसार में वास करते हैं जिसमें परमेश्वर से विद्रोह किया जाता है। मनुष्य इसी दिशा में जा रहा है, परंतु मैं प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकता हूं और उसे अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता कह सकता हूं। यह सच्ची स्वतंत्रता है। मैं भेड़ की चाल नहीं चलता, मैं अपना चुनाव कर चुका हूं। हे युवक, यदि आपको सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो प्रभु यीशु के पास आ जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 36 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही सच्ची स्वतंत्रता है। आज हमारे कई जवान भाई बहन गलत तरीके से अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं और वे नशे के आदि हो रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं और यह स्वतंत्रता उनको नाश कर रही है। मेरे जवान भाई बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु की ओर आ जाइए, वह आपको सच्ची स्वतंत्रता देगा। यदि आप इन नशे की चीजों से बाहर आना चाहते हैं, प्रभु के पास आएं, वह आपकी सहायता करेंगे क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्यों के लिए यह समझना कठिन है कि एक सदाचारी उतना ही परमेश्वर विरोधी भी है जितना कि जेल में बैठा एक अपराधी और अपने समुदाय के नियमों और आचार संहिताओं में बंधा है। उसका जीवन इन नियमों में बंधा होने के कारण मध्य मार्ग पर चल रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस ओर आगे बढ़े। आइए हम आगे पढ़ें। सबोपदेशक 8 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपने दुष्टता के कारण बच सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि वह समाज में स्थान पाने के लिए शराब पीता है तो एक दिन वह शराबी हो जाएगा। आज ऐसे लाखों लोग हैं जो सदाचारी कहलाते हैं, अंत में वे मर जाएंगे। उनमें मृत्यु का भय है, उसमें मृत्यु पर जय पाने की सामर्थ्य नहीं है। आज कितने लोग परिवारों को तोड़ रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, परंतु सदाचारी कहलाते हैं। सबोपदेशक 8 अध्याय के 11 पद में आगे लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। ध्यान दीजिए, यह आज का अति उत्तम विवरण है। दंड न दिए जाने के कारण अपराध बढ़ता है क्योंकि बुराई मनुष्य के मन में पहले ही से है। अपने आप को मसीही जन कहने वाले भी पाप में निर्वाह करते हैं। वे कहते हैं, मैं तो 5 वर्ष से ऐसा ही कर रहा हूं, परमेश्वर ने तो कुछ भी नहीं किया। यही तो उसका दंड है, उसने अब तक कुछ नहीं किया क्योंकि वह आगे खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तो अनंत काल तक आपकी प्रतीक्षा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है कि आप उसके निकट आ जाएं। जिस प्रकार से एक बालक जब पतंग उड़ाता है तो रस्सी की ढील देता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह फिर से रस्सी को लपेटने लगता है और पतंग उसके हाथ में आ जाती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आप कोई क्यों ना हो, आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं आप जिए, लेकिन ध्यान रखें कि परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा में है। सबोपदेशक 8 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। सुलेमान ने देखा कि ऊपर से तो दुष्ट और धर्मी में अंतर दिखाई नहीं देता, ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मी और दुष्ट में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का अंत एक सा होता है। तब वो आगे कहता है सबोपदेशक 8 के 15 पद में, तब मैंने आनंद को सराहा क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। खाने पीने और आनंद करने, अर्थात उचित यही है कि जीवन का आनंद लो, परिश्रम का सुख भोगो जो परमेश्वर ने उसके लिए धरती पर ठहराए हैं, यही उसका निष्कर्ष है। परंतु यह मनुष्य का एक अति निस्सार सिद्धांत है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको अपने जीवन पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सुलेमान अपने जीवन में हर एक बातों को प्रयोग में देख करके इस बात को स्पष्ट करता है कि सब कुछ व्यर्थ है, अर्थात हम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपने द्वारा से, अंततः हमें परमेश्वर के निकटता में आना है। इसलिए हम देर ना करें, परमेश्वर के पास आए, अपने जीवन में परमेश्वर को जगह दें। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने फिर से अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हम तो जल जिसने दाग हर गुनाह के मेरे